ये है पॉडकास्ट आशा की किरण, जहाँ पर आपको मिलेगी ढेर सारी खुशियाँ, उम्मीदें, आशाएं, उमंग, उत्साह, सकारात्मक सोच। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके जीवन में उम्मीदों का एक नया सूर्योदय आशा की किरण के साथ। इसे लेकर आऊंगी मैं किरण। जय श्री कृष्णा। हमने 30वें एपिसोड में द्वितीय अध्याय का समापन किया और अब 31वें एपिसोड में हम आरंभ कर रहे हैं तृतीय अध्याय। इस अध्याय को कर्म योग नाम दिया गया है। अध्याय में नाना प्रकार के हेतुओं से विहित कर्मों की अवश्य कर्तव्यता सिद्ध की गई है तथा प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके न करने में क्या हानि है, करने में क्या लाभ है, कौन से कर्म बंधन कारक हैं और कौन से मुक्ति में सहायक हैं, इत्यादि बातें भली भांति समझाई गई हैं। इस प्रकार इस अध्याय में कर्म युग का विषय अन्यान्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक और विस्तार पूर्वक वर्णित है एवं दूसरे विषयों का समावेश बहुत ही कम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह भी बहुत ही संक्षेप में हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन ने भगवान को मानो उलाहना देते हुए उनसे अपना ऐकांतिक श्रेय साधन बतलाने के लिए प्रार्थना की है और उसका उत्तर देते हुए भगवान ने तीसरे में दो निष्ठाओं का वर्णन करके चौथे में किसी भी निष्ठा में स्वरूप से कर्मों का त्याग आवश्यक नहीं है ऐसा सिद्ध किया है। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, अर्जुन उवाच। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्थात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है और ऐसा इससे पूर्व भगवान ने कहाँ कहा है? यदि नहीं कहा तो अर्जुन के प्रश्न का आधार क्या है? भगवान ने तो कहीं नहीं कहा, किंतु अर्जुन ने भगवान के वचनों का मर्म और तत्व न समझने के कारण दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय से यह बात समझ ली कि भगवान बुद्धि योग से ज्ञान का लक्ष्य कराते हैं। उस ज्ञान की अपेक्षा कर्मों को अत्यंत तुच्छ बतला रहे हैं। वस्तुतः वहाँ बुद्धि योग शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं है, बुद्धि योग वहाँ समबुद्धि से होने वाले कर्म योग का वाचक है और कर्म शब्द सकाम कर्मों का, क्योंकि उसी श्लोक में भगवान ने फल चाहने वालों को कृपणाह फल हेत वह कहकर अत्यंत दीन बतलाया है और उन सकाम कर्मों को तुच्छ बतलाकर बुद्धौ शरणम विच्छ से संभ बुद्धि रूप कर्म योग का आश्रय ग्रहण करने के लिए आदेश दिया है, परंतु अर्जुन ने इस तत्व को नहीं समझा। इसी से उनके मन में उपर्युक्त प्रश्न की अवतारणा हुई। बुद्धि शब्द का अर्थ यहाँ भी पूर्व की भांति सम बुद्धि रूप कर्मयोग क्यों न लिया जाए? यहाँ तो अर्जुन का प्रश्न है, वे भगवान के यथार्थ तात्पर्य को न समझकर बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ही समझे हुए हैं और इसीलिए वे उपर्युक्त प्रश्न कर रहे हैं। यदि अर्जुन बुद्धि का अर्थ सम बुद्धि रूप कर्म योग समझ लेते तो इस प्रकार के प्रश्न का कोई आधार ही नहीं रहता। अर्जुन ने बुद्धि का अर्थ ज्ञान मान रखा है, अतएव यहाँ अर्जुन की मान्यता के अनुसार बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ठीक ही किया गया है। मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन यह माने हुए हैं कि जिन कर्मों को भगवान ने अत्यंत तुच्छ बतलाया है उन्हीं कर्मों में तस्माद्युध्यस्व भारत, इसलिए तू युद्ध कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म में ही अधिकार है। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर, इत्यादि विधि वाक्यों से मुझे प्रवृत्त करते हैं। इसीलिए वे उपर्युक्त वाक्य से भगवान को मानो उलाहना सा देते हुए पूछ रहे हैं, आप मुझे इस युद्ध रूप भयानक पाप कर्म में क्यों लगा रहे हैं? यहाँ जनार्दन और केशव नाम से भगवान को अर्जुन ने क्यों संबोधित किया? सर्वैर जनैर्यद्यते याच्यते स्वभिलाषित सिद्धये इति जनार्दनः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सब लोग जिनसे अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए याचना करते हैं उनका नाम जनार्दन होता है, तथा क ब्रह्मा, अविष्णु, ईश महेश, ये तीनों जिनके वपु अर्थात स्वरूप है उनको केशव कहते हैं। भगवान को इन नामों से संबोधित करके अर्जुन ये सूचित कर रहे हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है यह बतलाने के लिए मैं आपसे पहले भी याचना कर चुका हूँ और अब भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं। अतएव मुझ याचना करने वाले शरणागत जन को अपना निश्चित सिद्धांत अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए। व्यामिश्रेमेण वाक्येन बुद्धिं महयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहं प्रुयाम। अर्थात आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। आप मिले हुए से वचनों द्वारा मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? जिन वचनों में कोई साधन निश्चित करके स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया हो, जिनमें कई तरह की बातों का सम्मिश्रण हो, उसका नाम व्यामिश्र मिले हुए वचन है। ऐसे वचनों से श्रोता की बुद्धि किसी एक निश्चय पर न पहुंचकर मोहित हो जाती है। भगवान के वचनों का तात्पर्य न समझने के कारण अर्जुन को भी भगवान के वचन मिले हुए से प्रतीत होते थे, क्योंकि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है। तो बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर, इस कथन से तो अर्जुन ने समझा कि भगवान ज्ञान की प्रशंसा और कर्मों की निंदा करते हैं और मुझे ज्ञान का आश्रय लेने के लिए कहते हैं, तथा बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पापों को यहीं छोड़ देता है। इस कथन से यह समझा कि पुण्य पाप रूप समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाले को भगवान बुद्धि युक्त कहते हैं। इसके विपरीत तेरा कर्म में अधिकार है, तू योग में स्थित होकर कर्म कर। इन वाक्यों से अर्जुन ने यह बात समझी कि भगवान मुझे कर्मों में नियुक्त कर रहे हैं। इसके सिवा निस्त्रैय गुणियो भव आत्मवान भव आदि वाक्यों से कर्म का त्याग और तस्माद्युद्यस्य भारत ततो युद्धाय युजस्व तस्माद्युद्यस्व भारत तस्माद्योग्याय युजस्व आदि वचनों से उन्होंने कर्म की प्रेरणा समझी। इस प्रकार उपर्युक्त वचनों में उन्हें विरोध दिखाई दिया, इसलिए उपर्युक्त वाक्य में उन्होंने दो बार इव शब्द का प्रयोग किया। यह भाव दिखलाया यद्यपि वास्तव में आप मुझे स्पष्ट और अलग अलग ही साधन बतला रहे हैं, कोई बात मिलाकर नहीं कह रहे हैं, आप मेरे परम प्रिय और हितैषी हैं, अतएव मुझे मोहित भी नहीं कर रहे हैं, वरम मेरे मोह का नाश करने के लिए ही उपदेश दे रहे हैं, किंतु अपनी अज्ञता के कारण मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं। यदि अर्जुन को दूसरे अध्याय के 49वीं और 50वीं श्लोकों को सुनते हुए ही उपर्युक्त भ्रम हो गया था, तो 53वें श्लोक में उस प्रकरण के समाप्त होते ही उन्होंने भ्रम निवारण के लिए भगवान से पूछ क्यों नहीं लिया, बीच में इतना व्यवधान क्यों पड़ने दिया। यह ठीक है कि अर्जुन को वही शंका हो गई थी, इसलिए 54वें श्लोक में ही उन्हें इस विषय में पूछ लेना चाहिए था, किंतु 53वें श्लोक में जब भगवान ने यह कहा कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी और परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमात्मा में संयोग रूप योग को प्राप्त होगे, तब उसे सुनकर अर्जुन के मन में परमात्मा को प्राप्त स्थिर बुद्धि युक्त पुरुष के लक्षण और आचरण जानने की प्रबल इच्छा जाग उठी। इस कारण उन्होंने अपनी इस पहली शंका को मन में रखकर पहले स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न कर दिए और उनका उत्तर मिलते ही इस शंका को भगवान के सामने रख दिया। यदि वे पहले इस प्रसंग को छेड़ देते तो स्थित प्रज्ञ संबंधी बातों में इससे भी अधिक व्यवधान पड़ जाता। उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, इस वाक्य का क्या भाव है? इससे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि अब तक आपने मुझे जितना उपदेश दिया उसमें विरोध प्रतीत होने से मैं अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सका हूँ। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि यदि आप मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं या समस्त कर्मों का त्याग कर देने के लिए। यदि युद्ध करने के लिए कहते हैं तो किस प्रकार करने के लिए कहते हैं, और यदि कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं तो उनका त्याग करने के बाद फिर क्या करने की आज्ञा देते हैं? इसलिए आप सब प्रकार से सोच समझ कर मेरे कर्तव्य का निश्चय करके मुझे एक ऐसा निश्चित साधन बतला दीजिए कि जिसका पालन करने से मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। यहाँ श्रेयः पद का अर्थ कल्याण करने का क्या अभिप्राय है? यहाँ श्रेयः प्राप्ति से अर्जुन का तात्पर्य इस लोक या परलोक के भोगों की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भूमि का निष्कंटक राज्य और देवों का आधिपत्य मेरे शोक को दूर नहीं कर सकते। यह बात तो उन्होंने पहले ही कह दी थी। अतः शेह प्राप्ति से उनका अभिप्राय शोक मोह का सर्वथा नाश करके शाश्वती शांति और नित्यानंद प्रदान करने वाली प्राप्ति से है। इसीलिए यहाँ श्रेय पद का अर्थ कल्याण किया गया है।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
ये है पॉडकास्ट आशा की किरण, जहाँ पर आपको मिलेगी ढेर सारी खुशियाँ, उम्मीदें, आशाएं, उमंग, उत्साह, सकारात्मक सोच। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके जीवन में उम्मीदों का एक नया सूर्योदय आशा की किरण के साथ। इसे लेकर आऊंगी मैं किरण।